Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Who am I? ये सवाल हमें कब से परेशान कर रहा था और अब फाइनली लगता है कि हमें जवाब मिलता जा रहा है। जहां हमने सोल कॉन्शियसनेस की बात की थी, ये जानने की कोशिश की थी कि मैं वो प्यार करने वाली शांत आत्मा हूं, उसे एक्सपीरियंस करने के कुछ स्टेप्स हमने पिछली कड़ी में सीखे थे, उसे अपनाया भी होगा, जरूर अपनाया होगा क्योंकि मैंने अपनाया होगा। एक बार फिर उस जो तीन स्टेप्स थे उन्हें छोटा छोटा याद कर लेते हैं। पहले वो शब्द सुनना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, फिर उस थॉट को, उस विचार को क्रिएट करना और फिर बाकी सभी विचारों को आते जाते रहकर उस एक विचार पर कुछ देर के लिए कंसंट्रेट करना। यहां से शुरू होता है हमारा ये सफर। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं सफर को और हर बार की तरह बातचीत के लिए हमें इस सफर में हमारी हम सफर बनी है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति
सिस्टर शिवानी। यहां तक तो हम पहुंच गए कि अभी हमने बात की कि इस एहसास को जो हम अब एक विचार की बात कर रहे हैं कि मैं वो शांत स्वरूप प्यार करने वाली आत्मा हूं, उसको हमने अपने साथ रखा, दिन भर रखा। बहुत से लोगों का एक सवाल आ रहा है, शायद मैं भी कहीं जानना चाहती हूं, इससे होगा क्या?
अच्छा
सोल कॉन्शियसनेस को अगर मैं कर भी लूंगी, मैं समझ रही हूं कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, जैसे कि आपने कहा था कि आई फील रियली हैप्पी, अगर एक मिनट भी अगर मैं खुश रह पाती हूं, वो एक मिनट की भी खुशी आगे कन्वर्ट होती जाएगी खुशी में। वन इज वेरी एपरेंट कि मैं खुश रहूंगी, आगे और भी कई तरह के परिवर्तन होंगे, क्योंकि अगर ये परिवर्तन मुझ में होते दिख रहे हैं, मुझे या दर्शकों को दिख रहे हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं।
बिल्कुल नहीं, परिवर्तन होंगे बट एंड परिवर्तन इमिजिएटली शुरू हो जाएंगे, लेकिन विद अटेंशन। यू नो इट वॉन्ट बी कि आपने एक बार कह दिया सुबह कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और सारा दिन परिवर्तन हो गया है। इट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू बी इन माई होल थिंकिंग प्रोसेस, माई होल बिलीफ सिस्टम, माई एंटायर ओल्ड बिलीफ सिस्टम कोलैप्सेस नाउ। यू नो सारे जो बिलीफ लेकर मैं चल रही थी वो सारे फिनिश्ड हो गए हैं, तो तुरंत परिवर्तन है। बिकॉज देन इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑल टूगेदर, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन, जो आज तक हम सुनते आए कि सारी दुनिया एक मिथ्या है। दुनिया मिथ्या नहीं है, लेकिन हमने जो थॉट क्रिएट कर दिया था कि हम सत्यता से परे हट गए थे, जो सच है उसको कहीं छुप गया था वो, और बाकी सारी चीजों को हम सत्य समझ लिया। अब जो आपने कहा, जो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन या सबसे पहला जो परिवर्तन आएगा वो है जब हम अपने आप को जान लेंगे कि मैं इटर्नल हूं। सबसे पहली बात, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मृत्यु का भय, मेरी मृत्यु नहीं होती है, तो मृत्यु का भय धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे फिनिश हो जाता है, क्योंकि मैं रियलाइज करती हूं कि मैं कौन हूं। हम सारा दिन एक कॉस्ट्यूम पहनते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अवेयर तो है ना कि ये कॉस्ट्यूम है, भले वो सारा दिन हमारे ऊपर ओढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस है कि ये कॉस्ट्यूम है, इसको मैंने पहना हुआ है, कल हम कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे। तो मैं आत्मा हूं सोल कॉन्शियसनेस जब ये एक सत्य बन जाएगा तो भय खत्म होने लगेगा जीवन से, कोई भी भय नहीं रहेगा। हम अपनी खुशी के लिए बाहर किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज नाउ वी अंडरस्टूड हैप्पीनेस इज मी, सो नो सेंस ऑर्गन से आई नीड हैप्पीनेस फ्रॉम आउटसाइड। तो धीरे धीरे मेरी डिपेंडेंसीज खत्म, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अ पोजिशन, अ पर्सन। तो डिपेंडेंसीज जहां खत्म होने लगती है, अडिक्शन भी खत्म होने लगती है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस इज आई एम। अडिक्शन भी हम क्यों करते हैं? कोई भी चीज वो हमें खुशी देती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी अपना सारा काम करना बंद कर देंगे, लेकिन इट्स वर्क दैट आई एम डूइंग, इट्स एक्टिविटी दैट आई एम डूइंग, इट इज आई एम डूइंग दिस सो दैट आई कैन गिव टू पीपल।
यू नो बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव दिस नोशन कि जो जील फॉर वर्क है ना, वर्क ही मेरी जिंदगी है, काम मेरी पूजा है, वो खत्म हो जाएगा। बट
वो खत्म नहीं होगा, उल्टा वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप उसको इंजॉय करना शुरू करेंगे। सी द डिफरेंस इज, आप ये करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, ठीक है? अभी का बिलीफ सिस्टम ये है। अब हमारा ये चेंज हो गया कि मैं ऑलरेडी खुश हूं, अब मैं खुशी से ये करना चाहती हूं, सो टू थिंग्स इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. एक है कि मैं ये करूंगी तो खुशी मिलेगी, तो हो सकता है वो मिले भी, हो सकता है नहीं मिले भी. एंड दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज सेइंग सैटिस्फैक्शन नहीं है, सैटिस्फैक्शन नहीं है. दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, कि व्हाट इज दैट सैटिस्फैक्शन यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज दे डूइंग एवरीथिंग एंड थिंकिंग कि ये करने के बाद मुझे वो एक्सपीरियंस होगा. बट वो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस बाहर से नहीं आने वाला है. आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम हैप्पीली गोइंग टू डू दिस. तो फर्क ये हो गया कि हम जो कुछ कर रहे हैं करते हुए खुशी अनुभव कर रहे हैं, वो काम अच्छा ही होगा. खुशी खुशी आप जो काम करोगे वो काम गलत हो ही नहीं सकता. फिर भी अगर 1% चांस कि उस कर्म का जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो वैसा नहीं हुआ जैसा आपको चाहिए था, फिर भी खुशी तो फिर भी आपको मिली. सो योर खुशी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग आउटसाइड एंड अगेन इट विल बिकम योर इंजॉइंग और योर हैप्पी थ्रू द जर्नी नॉट एट द डेस्टिनेशन. जो हमने सबसे पहले लिया था कि खुशी उस यात्रा के दौरान है, आपके परिवार को संभालने के दौरान खुशी है, ये नहीं कि वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी. नो, द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग देम ग्रो इज फन, इट्स एंजॉयबल. तो दैट होल बिलीफ सिस्टम विल चेंज कि दीज क्वालिटीज ये मेरे अंदर है, अब मैं इनको अंदर से बाहर एक्सप्रेस करना शुरू कर देती हूँ. तो क्या होगा, सैटिस्फैक्शन जो हम ढूंढ रहे हैं बाहर वो मेरी इनहेरेंट नेचर बन जाएगी. यू विल रिमेन स्टेबल, यू आर हैप्पी विद द वे थिंग्स आर आउटसाइड बिकॉज यू आर हैप्पी इनसाइड, आप बाहर नहीं ढूंढ रहे. उससे क्या होगा, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं सारी, अभी क्या होता है स्पेशली बहुत सारे बच्चे जो हमें ईमेल लिखते हैं या फोन करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, यू नो, एंड दे आर सफरिंग इनसाइड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स. यू नो सम पीपल राइट, मैं सबके सामने बोल नहीं पाता हूँ, या मैं स्टेज पे बोल नहीं पाता हूँ, या मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटर नहीं हूँ, या मेरी फ्रेंड बहुत स्मार्ट है मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ. यू नो ऑल दीज थिंग्स ये एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रही है. जब हमें ये समझ में आ जाए कि मैं कौन हूँ तो फिर ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर भर जाएगी, सेल्फ एस्टीम जो हमने बात की. आई नो माय वैल्यू, आई नो व्हाट आई एम वर्थ, माय वर्थ इज नॉट डिपेंडेंट कि मैं सबके सामने स्मार्टली बोल सकूं या नहीं बोल सकूं. दैट डज नॉट डिसाइड व्हाट आई एम वैल्यू.
इनफैक्ट आई थिंक ग्रेजुअली जो सक्सेस और फेलियर की प्रॉब्लम है, सक्सेस गिव्स मी मेक्स मी रियली फील गुड, यूफोरिया होता है, एंड फेलियर मेक्स मी गो सो डिप्रेस, वो दोनों का बीच का बैलेंस आ जाएगा.
एब्सोल्युटली, बिकॉज आई एम स्टेबल ना, स्टेबिलिटी आ जाएगी. और ये सब सी दैट्स व्हाट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी आर ह्यूमन बीइंग्स नॉट ह्यूमन डूइंग्स. अभी हम ह्यूमन डूइंग्स बन गए, ये करूं तो अच्छा होगा, ये करूं तो अच्छा, ये पहले बनो, यू बी दिस एंड देन यू डू वट एवर यू हैव टू डू. तो उससे क्या होगा, वट एवर यू हैव बिकम इनसाइड वो एनर्जी आपकी फ्लो करेगी उसमें. अब आप लोगों से मिलते हैं, हो सकता है कि हम बहुत स्मार्टली बात नहीं कर सकते, समबडी सेज आई कैन नॉट टॉक नाइसली, इट डजंट मैटर. बट इफ यू आर सो पीसफुल इनसाइड, यू आर सो प्योर इनसाइड, यू आर सो पॉजिटिव इनसाइड, बात भी करने की जरूरत नहीं है, पीपल विल जस्ट वॉन्ट टू कम एंड सिट विद यू. क्योंकि आपके पास बैठते ही उनको ऐसी इतनी अच्छी आपसे फील आएगी, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आएगी. आप बहुत अच्छी लैंग्वेज ना बोले उससे मैटर नहीं करेगा, आपके बोल कितने मीठे होंगे उसमें इतनी पवित्रता होगी, वो किसी को भी अच्छी लगेगी,
कम्फर्ट लेवल आ जाएगा,
कम्फर्ट लेवल आ जाएगा. तो यू नो एक्सटर्नल चीजों से जो हमारे बहुत सारे, क्योंकि हर एक के पास हर चीज नहीं हो सकती है बाहर. Somebody can be very beautiful in the physical sense, somebody may be not. But it's more important कि I'm beautiful inside. And wonderful बात यह है कि everybody can be that.
अच्छा एक और बात जैसे शिवानी यहाँ जानना चाहेंगे कि आजकल एक शब्द, कई सारे शब्द, कई सारे fads जो है ना वो इतने घुल मिल गए हैं आजकल, हर level पर बात हो रही है. जैसे हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं कि spirituality. Similarly there's one word which is like spread all over the world, I think, और वो है spiritual intelligence.
Right.
You know, आपकी आध्यात्मिक बुद्धिमता कहा जाए या जो भी बात कही जाए, exactly what it is, ये क्या है?
Spiritual और intelligence. Spiritual मतलब ये स्मृति आ गई कि I am that pure conscient being, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं शरीर नहीं और लेबल्स नहीं. Intelligence, कि आपको पता तो चल गया, यू नो व्हाट इज इंटेलिजेंस, अ वेरी डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज कि टू यूज व्हाट यू नो इन द राइट वे एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस एंड विद द राइट इंटेंशन. आपको बहुत कुछ पता है वो काफी नहीं है, लेकिन आपको जो पता है उसको सही समय पर सही तरीके से यूज करना, तब कहेंगे ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है,
बुद्धिमान है.
या तो कहेंगे इनको सब कुछ आता है लेकिन ये इसको समय पर यूज नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट इंटेलिजेंट. अब हमें स्मृति है, अब मुझे ज्ञान है, अब मुझे पता भी चल गया कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. नाउ इंटेलिजेंट, आई विल बी इंटेलिजेंट व्हेन आई यूज दैट इन द राइट वे एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. हाउ? कि नाउ आई हैव नो फियर. अब अगर मेरी कोई चीज गुम हो जाती है, बहुत वैल्यूएबल चीज गुम हो जाती है, मुझे पता है कि वो मेरी चीज थी, वो मैं नहीं हूं, गुम हो गई, कोई बात नहीं, नो डिस्टर्बेंस. इंटेलिजेंट, नॉलेज है उसको यूज किया, इंटेलिजेंट. आप आए, आपने आकर मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ कह दिया, बहुत बुरा भला कह दिया, मुझे पता है आपके मन में मेरे प्रति कोई इमेज है, आप उस इमेज के साथ खुश नहीं है तो आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप मुझे नहीं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे तो देख ही नहीं सकते. यू डोंट नो मी स्टिल, आई नो माई सेल्फ नाउ, सो आई विल नॉट गेट हर्ट.
दैट्स वंडरफुल एक्चुअली.
आई विल नॉट गेट हर्ट. दैट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. इफ आई नो कि आई एम अ पीसफुल सोल, एंड जैसे आपने आकर कुछ कह दिया एंड आई गेट हर्ट, देन आई एम नॉट इंटेलिजेंट. सो नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को सही समय पर सही तरीके से यूज नहीं किया तो हम कहेंगे ज्ञान होने का फायदा क्या फिर आपके पास. हर स्टेप पर उस, इसीलिए जो आपने कहा ना सोल कॉन्शियसनेस को यूज करना, सिर्फ नॉलेज इज ऑफ नो यूज. या मॉर्निंग में बैठ के 5 मिनट कर लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो सबसे पहले तो भय खत्म हो जाएगा, दूसरा रिलेशनशिप्स. अब अपने ऊपर तो स्टेबल रख पा रहे हैं कि ठीक है अब गुस्सा नहीं आता बहुत ज्यादा, लेकिन आप आए, आपने सडनली बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए या कुछ कहने लग गए, अब मेरी थिंकिंग आपके प्रति कैसे चलनी चाहिए. पहले थी ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, मुझे ऐसे बोल दिया, अच्छा बोल दिया, अब मैं चुप क्यों रहूं, मुझे भी दबा, यू नो दोज ओल्ड थिंकिंग पैटर्न. इंटेलिजेंट, कोई बात नहीं, ये भी तो एक शांत स्वरूप आत्मा है ना, अभी थोड़ा सा क्रोध के वश है, लेकिन ये है कौन, क्योंकि आई एम इन दैट स्टेट, सो आई एम एबल टू लुक एट यू इन दैट स्टेट. अब क्या होगा, मेरा रिस्पांस आपके प्रति चेंज हो जाएगा. पहले गुस्से का रिस्पांस गुस्सा था, धीरे धीरे सेकेंड स्टेज आएगी, आप गुस्सा कर रहे हैं, आई एम एबल टू रिमेन स्टेबल. तीसरी स्टेज आएगी, आई एम एबल टू रिमेन स्टेबल लेकिन आपके प्रति शुभ भावना, आपके प्रति भी कोई अंदर से थोड़ा सा भी द्वेष नहीं, थोड़ा सा भी नेगेटिविटी नहीं, तो उससे क्या होगा, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू कम डाउन जो भी सामने हमारे होगा. तो फिर उससे क्या होगा, हम चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, सामने वाला व्यक्ति भी चेंज होने लगता,
वातावरण बदलने लगता है,
बदलने लगता है. तो ऑल हैपनिंग विद दैट वन रिमेम्बरेंस कि मैं कौन हूँ. और धीरे धीरे ये भी होने लगता है कि जैसे हमें कई फोन कॉल्स ये आते हैं कि पेरेंट्स फोन करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत टेंस्ड हैं, हम उनको क्या करें. अब आपको अगर दूसरे को एम्पावर करना है, लेकिन उसके लिए पहले
खुद
शक्तिशाली होना पड़ेगा. तो हमारे पास अगर कोई आ रहा है, हमें उसकी मदद करनी है, पहले वो शक्ति मेरे अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए. सो फॉर अ पेरेंट, फॉर अ टीचर, ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप उस शक्ति से भरपूर हो, क्योंकि आपका रोल है.
एक्चुअली हमने जो पहले भी एक बार ये बात की थी कि जो सेंसिटिविटी को हम अपनी ताकत मान लेते हैं कि मैं रो सकती हूँ, रो पाने की क्षमता है मुझ में, तो ये मेरी ताकत है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि वो रोना जो है वो भी एक नेगेटिव एनर्जी.
हाँ, बिकॉज यू नो द मदर शी वाज सेइंग कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है तो मैं क्या करूं. आई सेड आप पहले तो एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर लो, कुछ भी गलत नहीं है, वो पढ़ेगा. बट एक शी सेइंग पर मैं क्रिएट ही नहीं कर सकती हूँ पॉजिटिव, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो नहीं पढ़ता. सो देन आई जस्ट आस्क्ड हर, जो चीज आप थॉट में नहीं क्रिएट कर पा रहे हो,
होगा क्या
वो प्रैक्टिकल में वो नहीं कर पा रहा है, फिर देन एक्सेप्ट इट. You know, then why are you forcefully trying to change him? आप thought भी नहीं create कर पा रहे हो, वो practical कैसे करेगा? मतलब हम इतने कमजोर हैं, तो वो भी कमजोर है फिर. We'll have to understand that. तो आप अपनी thinking पे उसको शुरू करो, फिर वो energy उस तक वो पहुंचेगी. फिर जब आप बोलोगे उसको कि पढ़ ले, इट विल बी विद पॉजिटिव एनर्जी. इट विल नॉट बी ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो ऐसा है, यू नो, वो नेगेटिव एनर्जी तो ट्रांसमिट करते हैं.
एक्चुअली होता यही है कि पहले ही मन में माना हुआ होता है कि पढ़ेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं बात, तो फिर कहोगे कि पढ़ो, कि मैं कह रही हूँ ना नहीं मानोगे तुम, पढ़ लो. सो देन आई कैन अंडरस्टैंड.
ये जो हमने यू नो एक बार कई क्वेश्चन हमें ये भी आए कि लोगों ने, हमने कहा था कि एक्सेप्ट पीपल एज दे आर फर्स्ट. सो पीपल सेड यू नो हाउ डू यू एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, देन दे विल नॉट चेंज. आप जैसे हैं पहले उसको स्वीकार करना, मतलब पॉजिटिविटी. जैसे ही मैंने कहा इनको ऐसे होना चाहिए था, इनको ऐसे नहीं होना, मतलब नेगेटिव थिंकिंग आपके प्रति मेरा चलना शुरू हो गया. अब भले मैं मुख से आपको अच्छे बोल बोलूं कि आप तो कर लेंगे, लेकिन अंदर सोच रहे हो ये तो नहीं कर पाएंगे, तो एनर्जी कौन सी ट्रैवल कर रही है नेगेटिव, तो आप नहीं करेंगे. तो एक्सेप्ट करना मतलब सबसे पहले आप जो हैं जैसे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. रिस्पेक्ट, बिकॉज आई सी द सोल. यू नो एक्सेप्ट करना भी कब इजी हो जाएगा, व्हेन आई सी द सोल, नॉट यू नो, दैट्स व्हाई एवरीथिंग गेट्स इंटरकनेक्टेड नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड. कि जब मैं देखूं कि ये भी एक पवित्र आत्मा है, भले छोटे छोटे अभी दाग लगे हैं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस मतलब उस प्योरिटी को देखना, वो आत्मा पहले ओरिजिनली कैसे थी उसको देखना. तो एक्सेप्ट करना, भले आप कितना भी गुस्सा कर रहे हैं आज, एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाएगा. आपके प्रति थॉट्स कैसे चलेंगे, ये भी एक प्योर सोल है. वाइब्रेशन आपको कैसी मिलेगी, ट्रांसफॉर्म होना, बिकॉज ट्रांसफॉर्म होने के लिए एनर्जी चाहिए. सब लोग चेंज होना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर वो शक्ति नहीं है. आप जब किसी के लिए इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, निमित्त बनते हैं, आप उनसे बात करते करते अगर उनको वो शक्ति भी दे पाते हैं, देन टू ट्रांसफॉर्म इज वेरी इजी. So that will play a very important role.
I think the दोनों journey, दोनों consciousness साथ साथ चलनी चाहिए कि मैं भी वो pure soul हूँ, सामने वाले जितने भी लोग हैं वो भी
वो automatically हो जाएगा.
Okay.
वो automatically हो जाएगा. And actually that's the journey, you know, कि सारा दिन हमें इसको practice कैसे करना है. कि मैं आत्मा हूँ, इसको सारा दिन, एक तो हुआ हमने morning में बैठ के किया, जो वो सारे steps 5, 10, 15 minutes जितनी देर भी easily कर बैठे. फिर उसके बाद सारा दिन में एक अभ्यास करना है, अटेंशन रखनी है, हर थोड़ी देर बाद बार बार अपने आप को याद दिलाना है. जो हमने शुरू से कहा, हर एक घंटे के बाद एक मिनट स्टॉप ब्रेक टू डू व्हाट, स्टॉप चेक व्हाट वाज माय थॉट एंड अगेन रिमाइंड हु एम आई, दैट्स इट, आई एम अ पीसफुल सोल, गो बैक टू वर्क, यू नो. तो इसलिए कोई भी थोड़ी सी भी ट्रेस अगर आई थी कोई और चीज की, इट फिनिशेस. एंड दूसरा, जब हम किसी से मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थॉट प्योर सोल. वी कॉन्शियसली मेक दिस एफर्ट. किसी को पता नहीं चलेगा, बोलना नहीं है, बहुत दूर का ऐसे करके देखना नहीं है, लेकिन कॉन्शियसली क्रिएट अ थॉट, आई एम मीटिंग अ प्योर सोल. द फर्स्ट वाइब्रेशन जो उनको आपसे मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी, That will be very pure. धीरे धीरे, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाएगा कि हाँ, हम किसी के फिजिकल फॉर्म या स्टेटस या इससे यू नो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम उनको रियलिटी में जानने लग गए हैं. तो जैसे ही हम आपको उस कॉन्शियसनेस से देखेंगे, तो हमारी आपके प्रति जो थॉट्स होंगे वो सारी चेंज हो जाएंगे. तो व्यवहार चेंज हो जाएगा, और अगर हमारा व्यवहार चेंज हुआ, आपका व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. जर्नी बिगिंस फॉर एवरीबडी.
वंडरफुल. अब कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं कि मॉर्निंग में हमने शुरू किया, ये जो हमने चार स्टेप्स की बात की है, बहुत से लोगों के सवाल ये हैं कि कैसे बैठना है, क्या यू नो नहाना या सब कुछ आप साफ करके या नहा धो के आप बैठेंगे, पूजा की तरह बैठना है, कहाँ बैठना है, रेगुलर उसी वक्त पर करना जरूरी है या नहीं, क्योंकि मेडिटेशन से जुड़ी ये कई सारी जो बातें हैं जो क्लैरिटी चाह रहे हैं.
मेडिटेशन एक आंतरिक यात्रा है, ये एक इनर जर्नी है, और राजयोगा मेडिटेशन 24 घंटे चलता है, यू नो, बिकॉज इट्स जस्ट अ थॉट पैटर्न. ये अभी तो फर्स्ट स्टेज है, फिर जो हमने पहले भी देखा कि परमात्मा से संबंध जोड़ना, परमात्मा को याद करना, उससे बातें करना, इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ टाइम ड्यूरेशन कि आपको 10 मिनट करना है, या इट्स समथिंग जो हम सारा दिन करते हैं. लेकिन क्योंकि सारा दिन हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में इतने ज्यादा घिरे हुए हैं, तो हम कॉन्शियसली थोड़ा समय सुबह निकालते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए. तो वो समय हर एक अपने लिए चूज करे, द अर्लियर द बेटर. जितना सुबह आप जल्दी करते हैं उतना अच्छा होगा, क्योंकि उस समय वायुमंडल बहुत पीसफुल होता है। इट्स लाइक अगर गुड़गांव से आई थिंक ऑफ ड्राइविंग टू दिल्ली, तो आई से लेट्स लीव अर्ली, नो ट्रैफिक। तो अगर कोई ट्रैफिक नहीं होगा तो आप बहुत स्मूथ, बहुत कम टाइम में और कहीं अटके बिना अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जितना लोग उठते जाते हैं उतना नेगेटिव एनर्जीज वायुमंडल में फैलती जाती हैं, क्योंकि हर माइंड जो जागृत अवस्था में आ गया, उठ गया, हलचल शुरू हो गई, अभी क्या करना है, कितने बजे जाना है, फिजिकल नॉइज तो है ही है घर के अंदर, लेकिन मेंटल नॉइज, द होल टर्मोइल इन द हाउस बिगिंस। तो आइडियली डू इट व्हेन एवरीवन इज स्लीपिंग, तो यू नो वो टाइम थोड़ा सा, और वैसे भी बिफोर योर डेली रूटीन स्टार्ट्स, तो उससे पहले शुरू कर लें। और इसलिए जो आपने कहा कि जरूरी है कि नहा धो के ही सब कुछ करना है, पर्सनल चॉइस हर एक की, दिस विल ऑल्सो बी पर्सनल चॉइस, लेकिन वो ही होता है कि जब अगर हम वो सब कुछ करने में लग जाते हैं तो शायद फिर वो बहुत लेट हो जाता है और तब तक फिर बहुत एक्टिविटी शुरू हो चुका होता है और माइंड में भी बहुत कुछ आ गया होता है तब तक। तो आइडियली बस उठकर फ्रेश होकर आप बैठ जाओ, यू नो, ताकि माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो जाए, क्योंकि दिस शुड बी योर फाउंडेशन फॉर द डे। अगर एक, क्योंकि वो जो हम कह रहे हैं ना आने जाने वाली थॉट्स को, जब हम सवेरे जस्ट उठते हैं तो वो आने जाने वाली थॉट्स बहुत कम है, लेकिन एक एक घंटा जो पास होता जाएगा बहुत सारे होंगे। तो जितना जल्दी करेंगे एफर्ट कम, रिजल्ट ज्यादा। तो सुबह बस फ्रेश होकर अपना एक स्थान बना लें, प्रेफरेबली नॉट ऑन योर बेड, बिकॉज आप सो जाएंगे शायद फिर से। तो एक अलग स्थान जहां वाइब्रेशन अच्छा हो, प्रेफरेबली नॉट इन द टीवी रूम, बिकॉज टीवी रूम में भी वाइब्रेशंस बहुत अलग तरह के होते हैं। ओपन में भी कर सकते हैं, किसी बालकनी में, टेरेस पे, या फिर एक कोई भी आप स्थान लेकर आराम से बैठ जाए। और ट्राई कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो कि रोज उसी स्थान पर बैठे, और अगर ये संभव हो तो आइडियली अप्रोक्सीमेटली उसी समय पर भी बैठे, तो माइंड को भी जैसे एक आदत पड़ जाती है वो करने की। और पोस्चर की जहां तक बात है, तो यस, जो क्रॉस लेग्ड पोस्चर है आप बैठते हैं, ये डेफिनेटली हाईएस्ट अटेंशन वाला पोस्चर होता है बेसिकली, सो दैट्स द ओनली रीजन। बट अदरवाइज आप कंफर्टेबल होकर, हम जैसे अभी बैठे हैं हम बैठ सकते हैं, जैसा कंफर्टेबल लगे। जर्नी अंदर है, राजयोग फिजिकल या शारीरिक पोस्चर के ऊपर नहीं कंसंट्रेट करती है, वो हमारी आंतरिक यात्रा है, आत्मा का परमात्मा से संबंध है। और जहां समय और स्थान, और क्या आपने पूछा था, आंखें, हम बहुत इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखते हैं कि हम आंखें खुली रखकर बैठते हैं। क्यों? जो अब आपने देखा कि सोल कॉन्शियसनेस कितनी देर प्रैक्टिस करनी है, यू नो व्हाट एम आई डूइंग इन मेडिटेशन, आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग हु एम आई, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई डोंट नीड टू क्लोज माय आईज फॉर दैट,
आई बी इंट्रोड्यूसिंग माय
सेल्फ, आई बी डूइंग दिस द होल डे। तो सिर्फ अपने को याद रखना है और उस परमात्म शक्ति को याद करना है। हम सारी दुनिया को आंखें खोल कर ही याद करते हैं, किसी को भी याद करने के लिए आंखें बंद नहीं करते हैं, तो फिर परमात्मा को याद करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत क्यों है? आंखें बंद करने से क्या होता है, नींद आने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, और आंखें बंद करने से कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली कम होती है। आंखें जब खुली रहती हैं हम अटेंशन पर एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, आंखें जब बंद होती हैं बहुत सारे सीन्स आते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सारा दिन करना है, तो हम अगर आंखें बंद करके करने का अभ्यास हो जाए तो फिर हम उसको सारा दिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जैसा कंफर्टेबल हो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे। बट आइडियली रिमेम्बर दैट यू हैव टू डू इट द होल डे, मैं कौन हूँ ये सारा दिन याद रखना है।
कई बार वॉक करते हुए, ड्राइव करते हुए, जॉगिंग करते हुए कहा जाता है कि मेडिटेट नहीं कर सकते या कर सकते हैं, सो लाइक जब हम 24 घंटे भी करेंगे,
करते हुए करना है, उल्टा हम तो अभ्यास ये करते हैं कि जितना ज्यादा परसेंटेज उसको बढ़ा सके, जो ऐसी स्टेज तक पहुंच सके जो सोल कॉन्शियसनेस 24 आवर्स है, बिकॉज दैट इज दैट परफेक्ट प्योरिटी ऑफ 100% प्योर स्टेज। जब आप बिल्कुल ईगो से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जिस क्षण आपको याद है मैं आत्मा हूँ, आप उस प्योरिटी की स्टेज में, जिस क्षण भूल गया तो आप ईगो की स्टेज में, तो अब आप ड्राइव करते हुए, वॉक करते हुए, इस सब में भी तो ईगोलेस बनना चाहेंगे ना, इट्स थ्रू आउट एक्टिविटी करते हुए भी उल्टा अभ्यास करना चाहिए, करना ही चाहिए। हम लोग कॉन्स्टेंटली वो ट्राई करते हैं कि सब कुछ करते हुए प्रैक्टिस करें, आई एम अ सोल हु इज डूइंग दिस, आई एम अ प्योर सोल। तो क्या होगा, वॉक करते हुए भी आप वो वाइब्रेशंस, नहीं तो कुछ तो सोचेंगे, इधर उधर का सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, वो वाइब्रेशंस फैलाएंगे। आर वाइब्रेशंस क्रिएट एटमोस्फेयर, तो जितनी देर वो प्योर थॉट्स क्रिएट करेंगे, you're creating the atmosphere around.
Wonderful, and we can create actually.
We are creating.
Thoughts are being created by us. Unconsciously, जब हम कर रहे होते हैं तो कुछ भी आ रहा होता है।
उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों किया? You know, we are walking. We walk करते हुए तो सारे दिन के thoughts आते हैं उसके अंदर।
तो सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि practical aspects पे हम आए और soul consciousness का जो एक पूरा process है उसको 24 घंटे तक, एक मिनट से शुरू करके 24 घंटे तक लेकर जाना, ये एक चैलेंज नहीं मैं कहूंगी, एक परिचय है एक्चुअली, यू नो, और ये जिंदगी का एक तरीका बन जाए तो आई थिंक दैट विल बी द आइडियल सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पूरी बात के लिए। ओम शांति। सोल कॉन्शियसनेस के इस पूरे एस्पेक्ट को हमने समझा, कैसे हम शुरुआत करेंगे दिन की, और ये छोटी छोटी बातें कि जब हम मेडिटेट कर रहे हैं तो कुछ बातें अगर हम रेगुलराइज कर लें तो हमारी जिंदगी के लिए भी कहा जाता है कि वो सही होती हैं। तो जब एक ही जगह पर बैठकर उसी वक्त अगर कोशिश करें कि जो 5 मिनट 10 मिनट हमने देने हैं, जो हमने अपने आप से वादा किया है कि ये वक्त तो थोड़ा हम गुजारेंगे अपने साथ, उसके बाद 24 घंटे हमारे अपने हैं, कितना अपने साथ तारुफ करना चाहेंगे, कितना हर बार अपने आप को ये याद दिलाना चाहेंगे कि मैं कौन हूं और जिससे मैं बातचीत कर रहा हूं, जो मेरे आसपास है, वो कौन है। इस पूरी अवेयरनेस के साथ अगर जिंदगी जी ली जाए तो सचमुच जिंदगी खूबसूरत हो जाती है।